परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। आ मेरे पास आ, मुझसे न दूर जा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूरक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से आज की शाम परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष प्राप्त होगा, और इतना ही नहीं, आप निरंतर हमारे कार्यक्रम को भी पसंद करेंगे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक नए श्रोता भाई बहनों के लिए जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम सब मिलकर जब आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके वचन को समझ सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हर एक प्रकार की बुरी आदतों से, बुराइयों से हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप छुटकारा प्रदान करें। जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, आप उनकी भी सहायता करें। इस घड़ी फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम नीति वचन में से 25 अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह नीति वचनों का एक नया भाग है। ये नीति वचन भी सुलेमान के नीति वचन हैं, परंतु इनका संग्रह हिजकिय्याह के किसी कर्मी ने किया है। यूनानी बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह के मित्रों ने उसका संग्रह किया है। आइए आप मेरे साथ नीति वचन 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़िए। लिखा है, सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने में होती है। नीति वचन प्रभु यीशु के वचनों को इसी रीति से प्रस्तुत करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। पौलुस ने भी यही बात कही है 2 तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय के 15 पद में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें वचन में खोजना है, परंतु यह भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने बहुत सी बातें हम पर प्रकट नहीं की है। मुझे संदेह है कि यदि परमेश्वर हम पर प्रकट करे तो भी हम उसे समझ नहीं पाएंगे। वे ग्रहण शक्ति से परे हैं। उसने यशाया के पुस्तक 55 अध्याय उसके 9 पद में इसे प्रकट किया है, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। कहने का अर्थ है कि हमारे सोच विचार और परमेश्वर के सोच विचार में आकाश और पृथ्वी के समान अंतर और दूरी है। परमेश्वर ने हम पर जो प्रकट किया है, जी हाँ, हमें उसका तो अध्ययन करना आवश्यक है, उसे समझना भी आवश्यक है, और यह महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के वचन की खोज और उसके अध्ययन की आवश्यकता को और अधिक समझना है। नीति वचन 25 के 3 पद में लिखा है, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। हमारे अगुए क्या करते हैं हम समझ नहीं पाते, परंतु वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझते, इसलिए हमें परमेश्वर की आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह सही करता है, हमारी भलाई के लिए करता है। नीति वचन 25 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। एक दुष्ट सलाहकार पाना किसी का दुर्भाग्य है। वह अपने आप को परेशानी में डालता है, कष्टों में, वरन पाप में डाल देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक भले मनुष्य ने मुझे बचा लिया। मैं एक गलत सलाहकार के मार्गदर्शन में गलत मार्ग पर आ गया था, अब सोचिए कि एक उच्च पदाधिकारी का सलाहकार गलत हो तो क्या होगा? क्या उसके राज्य का विकास होगा? एक नियोजक जिसके पास अनेक कर्मचारी हैं, या एक नेता जिसके कंधों पर जनता का उत्तरदायित्व है, यदि उसका सलाहकार सही ना हो तो क्या होगा? मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे नीति वचन 25 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे यह कहा जाए आगे बढ़कर विराज। बड़ाई न करना, आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने इस महान सत्य को प्रकट करने के लिए एक दृष्टांत सुनाया था और वह इसके लिए विवश था, क्योंकि उसके युग के धर्म गुरु इस नीति वचन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब कोई प्रतिष्ठित जन भोज का आयोजन करता था तब वह माननीय अतिथियों के लिए स्थान निर्धारित करता था। वहां खाने के लिए घंटी बजाई जाती थी और अतिथि अच्छे स्थान पर बैठने के लिए शीघ्रता करते थे। प्रभु यीशु शायद एक ऐसे भोज में था और वह रुका रहा कि अन्य अतिथि अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस दृश्य को देख यीशु ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, लुकार्चि सुसमाचार 14:7-10 में, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह पर बैठना पड़े, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा करके बैठना, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। आज हम क्या करते हैं, किसी भोज में किसी मित्र के पास जाते हैं तो हम सबसे अच्छा स्थान पहले लेने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आज ऐसे धक्का मुक्का करने वाले लोग मसीहियों में भी हैं, वे महत्वाकांक्षी हैं, वे मसीह की बातों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एक त्रासदी है। आप व्यापार में किसी को आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्का करने के लिए दोष नहीं दे सकते, परंतु मसीही सेवा में ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति वचन 25 उसके 8 पद में लिखा है, झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। इसके संदर्भ में भी प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया था, जिसे हम लुकारचि सुसमाचार 14:31-32 पद में पढ़ते हैं, कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं, नहीं तो दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। पुराने नियम में योशिया एक इसका उदाहरण है। वह एक अच्छा राजा था और वह यहूदा राज्य में एक महान जागृति लाया था, परंतु उसने एक गंभीर चूक की। एक ही चूक किसी महापुरुष का जीवन नष्ट कर देती है। मिस्र का राजा नीको युद्ध अभियान में आगे बढ़ रहा था। योशिय्याह को युद्ध में देख उसने कहा कि वह उसे युद्ध करने नहीं निकला है, परंतु योशिय्याह ने जवानी के जोश में उसका सामना किया। मेरे विचार में वह इसे परमेश्वर की इच्छा समझ रहा था। हम प्रायः अपने गलत निर्णय के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं। वह मगीदो के युद्ध में मारा गया। यही वह स्थान है जहां हर्मगिदोन का अंतिम युद्ध होगा। आप देख सकते हैं दूसरा राजा की पुस्तक 23:28-30 पद में, परमेश्वर चाहता है कि हम किसी की बात में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। मेरे मित्रों, हम नीति वचन 25 उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना, ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। अपने पड़ोसी से किसी से आलोचना न करना, अर्थात आलोचना करना अच्छा नहीं है। यदि आपका पड़ोसी चूक करता है, गलती करता है, तो सीधे जाकर उससे आप बात करें। नीति वचन 25 के 11 पद में लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। अति सुंदर, यह एक अति उत्तम उपमा है। चांदी की टोकरियों में सोने के सेब, यहाँ सेब तो कहा गया है परंतु वास्तव में यह संतरा है। इसराइल में आज सर्वोत्तम संतरे उत्पन्न होते हैं। सुलेमान के युग में भी वहाँ अति उत्तम प्रकार के संतरे उगते थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने सही समय पर सही बात बड़ी ही अच्छी रीति से कही है। कभी अच्छी बात तो कभी झिड़की भी, परंतु उसकी आवश्यकता थी। ठीक समय पर कहा हुआ वचन, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना सीखें। हम जानते हैं कि हम गलत समय पर गलत बात भी कह देते हैं, या कभी कभी हमें गलत समय पर भी सही बात कहने की कला होती है। ऐसा समय भी होता है कि हमें अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसे विश्वासियों को जानते हैं जो सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक समय पर कहा हुआ वचन, जी हाँ, एक धर्मी महिला रविवार आराधना के बाद प्रचारक से मृदु वचन कहने के लिए जानी जाती थी। लोग उसके पास आते थे कि सुने वह क्या कहती है, क्योंकि कभी कभी उनके पास उपदेश की प्रशंसा में कहने को कुछ भी नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके मध्य एक प्रचारक था जिसका उपदेश किसी को नहीं भाया। अतः सब उस महिला के निकट आए कि सुने वह क्या कहेगी। उसने कहा, पास्टर, मैंने आपके उपदेश का पूर्ण आनंद उठाया, क्योंकि आपका आज का बाइबल पाठ बहुत अच्छा था। यही ठीक समय पर कहा हुआ वचन कहलाता है। ये चांदी की टोकरी में सोने के सेब हैं। नीति वचन 25 के 12 पद में लिखा है, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। आपने महिलाओं को सुंदर कुंदन पहने हुए देखा होगा। आज पुरुष भी कुंदन पहनते हैं, परंतु वे सुंदर नहीं होते। ऐसे ही मानने वालों के कान में बुद्धिमान की डांट होती है। यह आवश्यक है, परंतु आज आप यदि किसी को डांट दें तो सुनने वाले कहते हैं, आपने यह अच्छा नहीं किया, अब वह हमसे दूर हो जाएगा, आप उसे कभी लौटा कर नहीं ला सकते। मेरे मित्रों, यदि वह मानने वाला मनुष्य है तो अवश्य लौट कर आएगा। यदि वह विद्रोही है तो आप वैसे भी उसे जीत नहीं पाते, परंतु झिड़की का भी एक समय होता है। नीति वचन 25 उसके 13 पद में लिखा है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। उस देश में कटनी के समय गर्म हो जाता है। वे लोग उस समय हरमन पर्वत पर जाकर बर्फ लाते थे। वहाँ की बर्फ बहुत अच्छी है, वह बहुत स्वादिष्ट है। एक विश्वास योग्य संदेश वाहक ऐसा ही होता है। इसमें संदेह न हो कि प्रभु यीशु कुछ से कहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 21 पद के अनुसार, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मेरे प्रियो, हम सबको विश्वास योग्य मनुष्यों का साथ अच्छा लगता है। पुरुष को विश्वास योग्य पत्नी अच्छी लगती है। विश्वास योग्य संतान की वह प्रशंसा करता है। नियोजक को विश्वास योग्य कर्मी अच्छे लगते हैं। पास्टर को विश्वास योग्य कलीसिया अच्छी लगती है। कलीसिया को विश्वास योग्य पास्टर अच्छा लगता है। विश्वास योग्यता एक महान सद्गुण है। एक विश्वास योग्य साथी ऐसा है जैसा गर्मी में ठंडा पेय। नीति वचन 25 उसके 14 पद में लिखा है, जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। प्रियो, कुछ लोग गर्व तो करते हैं परंतु उनके पास वह गुण नहीं होता है। मुझे स्मरण है कि एक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा और कहा कि वह एक अति उत्तम प्रचारक, बाइबल शिक्षक, गायक और पियानो बजाने वाला है। वह हमारी कलीसिया में सभा करना चाहता था। मैंने वह पत्र अपनी समिति को दे दिया और समिति में पढ़कर सुनाया। वे हंसकर बोले, आप उसे अवसर क्यों नहीं देते? मैंने कहा, दो मुख्य कारणों से मैं उसे बुलाना नहीं चाहता हूँ। पहला, वह यदि उतना ही अच्छा प्रचारक है जितना वह कह रहा है, तो मेरी कलीसिया उसे सुनने के बाद मेरा प्रवचन सुनना पसंद नहीं करेगी। दूसरा, मेरे विचार में वह जिस बात पर गर्व करता है वह उसमें है नहीं। जी हाँ, यह अंतिम समय के अधर्मियों का चित्रण है। यहूदा उन्हें अति उत्तम उपमाओं द्वारा व्यक्त करता है। निर्जल बादल, फलहीन वृक्ष। यहूदा 12 और 13 पद में लिखा है, समुद्र के प्रचंड हिल कोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। हम नीति वचन 25 के 16 पद में पढ़ते हैं, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। मित्रों, पुराने नियम में शहद मधुरता का प्रतीक था। शहद बलिदानों में नहीं था क्योंकि बलिदान प्रभु यीशु के मनुष्यत्व का प्रतीक थे। क्या आपकी भेंट ऐसे मनुष्य से हुई है जो बहुत अधिक मीठी मीठी बातें करे और आप ऊब जाएं? क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए उचित हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। नीति वचन 25 के 17 पद में लिखा है, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन होकर घृणा करने लगे। यह एक अति उत्तम नीति वचन है, अपने पड़ोसी के घर अधिक नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी कहे, इसे जल्दी भेजो। किसी के घर अपने स्वागत को खोना अच्छा नहीं है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं, नीति वचन 25 उसके 19 पद में लिखा है, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। यहूदा इस्करियोती टूटा हुआ दांत और उखड़ा हुआ पांव था। शायद आपकी भेंट भी ऐसे मनुष्यों से हुई है। नीति वचन 25 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। प्रभु यीशु ने और पौलुस ने भी इस सिद्धांत को दोहराया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति वचन 25 के 23 में लिखा है, जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। आज हमें किसी को झिड़कना शिष्टाचार नहीं कहलाता, हमें मीठी मीठी बातें करना है। मुझे लोग लिखते हैं कि मैं किसी समुदाय विशेष या किसी संस्था विशेष के प्रति कठोर शब्दों का उपयोग करता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इसे उचित मानता हूँ? उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, कठोर मुखाकृति पीठ पीछे बुराई करने वाले की जीभ को वश में रखती है। वह आज के झूठे शिक्षकों को भी यथास्थान रखती है। मेरे विचार में उनसे ऐसा व्यवहार करना उचित है। मैं तो अवश्य कहूंगा कि यदि कहना महत्वपूर्ण है तो अवश्य कहें। मृदुता और प्रकाश अति उत्तम है, परंतु जिस संसार में हम वास करते हैं उसमें जीवन पथ पर सांप और गड्ढे भी हैं। परमेश्वर के वचन की झूठी शिक्षा है, मैं तो इसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा, परंतु आशा करता हूं कि यह प्रेम की आत्मा में हो। मेरे मन में किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर के सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ। ताकि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के सत्य वचन को जाने। मैं परमेश्वर के वचन में इसका पर्याप्त पक्ष देखता हूँ। यहाँ इसके पक्ष में एक पद है, नीति वचन 25 उसके 24 पद में। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। यह पहले भी अनेक बार हम देख चुके हैं। सुलेमान के पास अनेक पत्नियां थी, अतः उसे पत्नियों से प्राप्त कष्ट का अनुभव था और यही कारण है कि वह इसे बार बार कहता है। नीति वचन 25 अध्याय के 25 पद में लिखा है, जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। क्या आपको हाल ही में अपने घर से पत्र प्राप्त हुआ है या आपने अपनी माता को पत्र लिखा है? यह महत्वपूर्ण है। इस पद में जो दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा अर्थ छिपा है। दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार प्रभु यीशु ने कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 पद में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उस थोड़े से समय में जॉन वेस्ली कहते हैं कि परमेश्वर ने एक लंबी दूरी को संकुचित किया और आपका और मेरा उद्धार किया। यह शुभ संदेश दूर देश से हमारे लिए आया था। क्या आपने उसे ग्रहण किया? क्या आपने उसे अपनाया? वह जीवन का जल है, वह थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी है, वह अनंत शांति और आनंद है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आज तक आपने इसे ग्रहण नहीं किया है तो आज आप उसे ग्रहण करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा।